पक्षियों में जब वो एहसास करे तब समझ लेना कि वो आत्मज्ञानी है। रविंद्रनाथ टैगोर जिनको नोबेल पुरस्कार मिला गीतांजलि पुस्तक के कारण, गीतांजलि एक काव्य है और वो बेसिकली फिलोसॉफिकल पोएम है, एक दार्शनिक हमारे जो उपनिषद की सिद्धांत जो थ्योरीज है उसी पर बेस्ड है। तो चारों तरफ खुशी मनाई गई और रविंद्रनाथ के सामने जहां वो रहते थे उनके घर के सामने एक बुजुर्ग रहता था, बुढ़े आदमी पर बहुत समझदार थे। जैसे ही वो रविंद्रनाथ उनको घर के सामने मिलते थे वो हमें पूछ लिया करते थे कि अच्छा तुम्हें नोबेल मिला है, ये गीतांजलि लिख करके मिला है, ये गीतांजलि में जो तुमने लिखा इसको सब समझते हो? तो रविंद्रनाथ ने अब हां कहें ना कहें, क्योंकि कभी कभी सामने वाला बड़ा छोटा सवाल पूछता है पर इतना दमदार लगता है कि मुंह से वो निकलता नहीं कि जो हम नहीं है वो झूठ निकलता नहीं है। तो रविंद्रनाथ सक पकाए, कुछ बोल नहीं पाए। जब भी रविंद्रनाथ सामने मिलते अब वो बुजुर्ग घर के बाहर बरंडे में बैठा होता था तो वो उनको पूछ लिया करते थे, तुम्हें पता है जो तुमने लिखा है वो क्या है? रविंद्रनाथ चुपचाप चले जाते थे और धीरे 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 ऐसा होने लगा कि अब रविंद्रनाथ को डर लगने लगा कि बाहर निकले कहीं वो बुजुर्ग ना मिल जाए, उसका तो कोई काम धंधा नहीं है, वो बरंडे में बैठा रहता है, बस वो आए जाते आते जब भी देखा पूछ लिया। और रविंद्र इतना बड़ा किताब लिख दिया उसके अंदर जो लिखा उसको समझते हो? अब दुनिया तो पूजा करती है रविंद्रनाथ की और ये बुजुर्ग है कि कुछ कहा भी नहीं जा सकता। तो वो घबराने लगे, अब तो बाहर निकले दरवाजे से बाहर निकले तो खिड़की से देखते थे कि है तो नहीं है, मूड खराब हो जाता था। एक दिन बारिश का मौसम था, खूब बारिश हुई थी। अब बारिश के आने के बाद फिर सूरज उग गया, दिन हो गया और टहलने के लिए शाम को रविंद्रनाथ बाहर निकल पड़े। देखा सामने बुजुर्ग भी नहीं है तो बड़े रिलैक्स्ड होकर के शांत भाव से चल पड़े। चलते हुए देखा गंदे नालों में भी सूरज की रोशनी पड़ी है, जहां तालाब है यहां भी रोशनी पड़ी है, पेड़ों में भी है, जो सुंदर सुंदर फूलों के पेड़ है वो भी सूरज की रोशनी से चमकते हैं, जहां कूड़े कचड़े पड़े हैं वो भी रोशनी से चमकते हैं, हर जगह उनको वो प्रकाश दिखा। हर जगह दिखा क्या, वो तो रोज ही दिखता है, रोज सूरज सुबह उगता है, पर बहुत कम लोग होते हैं जो उगते हुए सूरज को देख पाते हैं। एक तो हम काम में व्यस्त होते हैं, हम अपनी अपनी दिनचर्या में पता ही नहीं चलता। अगर गलती से किसी को कभी होश आया कि देख ले, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें कोई धड़कन, कुछ दिल में कोई धड़कन नहीं होता है, मतलब वो उसको एहसास नहीं कर पाते हैं। कुछ गिने चुने होते हैं जिनको थोड़ा एस्थेटिक थॉट्स से, जो थोड़ी अलंकारिक कविता का सोच रखते हैं, या जो थोड़े प्रेमी है प्रकृति के, उनको मजा आता है, वो डूब जाते हैं। तो दुनिया में करोड़ों लोग रोज सूरज सुबह उगता है, कोई एक आधा लोगों व्यक्ति को सूरज के उगते हुए सूरज की सुंदरता झलक देता है। कभी कभी हम एक ही चीज को बार बार देखते हैं पर उसका कभी कभी कीमत या जो जो महत्व है अचानक हमें समझ में आता है। उसी तरह रविंद्रनाथ शायद उस बुजुर्ग के बार बार प्रश्न से बिल्कुल झुंझला गए थे, झकझोर गए थे, और अचानक उस दिन उनको रोज सूरज के प्रकाश देखते हैं पर उनको उस दिन कुछ अलग से दिखा, गंदे नाली में भी, साफ पानी में भी, रास्ते में भी, झाड़ियों में भी, फूलों में भी, हर जगह सूरज की रोशनी को उन्होंने एहसास किया, फिर कविता की पंक्ति में लिखा। और वो लिखते हैं, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सूरज का प्रकाश सब में समाता है, वो गंदी नाली हो, कीड़े कचड़े हो, कूड़े कचड़े हो, या सुंदर सुंदर फूलों के पेड़ हो, या झरना हो, या नदी हो, सूरज सब जगह चमक रहा था, वो कूड़ों से दूर नहीं था, गंदगी से दूर नहीं था, या सांप को ज्यादा आदर नहीं कर रहा था। आत्मज्ञान का यही सीधा सा सिंपल सा अर्थ है, जो उस सत्ता को सब जगह एहसास करे। शायद रविंद्रनाथ को अंदर से उस दिन एहसास हुआ और बड़े अंदर से खुश होकर के आए कि आज अगर बुजुर्ग मिले तो मैं उसको बताऊं कि गीतांजलि में जो लिखा मैं उसको किस हद तक समझता हूं। सामने बुजुर्ग नहीं मिला तो वो इंतजार करने लगे, दरवाजा खटखटाने लगे आज बुजुर्ग के। बुजुर्ग व्यक्ति जब बाहर सामने आया, रविंद्रनाथ को देखा, कुछ पूछा नहीं। रविंद्रनाथ कहा कि आज आप पूछोगे नहीं ना, आज तो तुम्हारे शक्ल में लगता है कि तू समझ कर आए हो। जब आप समझ जाते हैं तो किसी को शंका होगी ही नहीं कि आप समझे हुए हो या नहीं हो। जब तक समझ आता नहीं है और आप बोलते रहते हो कि मैं से जानता हूं, तभी लोगों को डाउट होता है कि तुम कितने जानते हो। किताबों को पढ़ने से, सुनने से, समझने से ज्ञान होना और किसी चीज को रियलाइज करना दो अलग अलग चीजें हैं। यही चीजें हैं कि संसार के हर वस्तु में उस आत्म तत्व को, उस ईश्वर की सत्ता को एहसास करना, ये आत्मज्ञानी का लक्षण होता है। वो सब जगह है और सबको धारण करता है। वो जड़ हो या चेतन हो, वो अच्छा हो या बुरा हो, वो अंधेरा हो या प्रकाश हो, वो दुष्ट हो या साधु हो, सबके अंदर वो समाया हुआ है और सबको वो धारण करने वाला है। दिस थ्री पार्टिकल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम तैत्तिरीय आरण्यक। स्वामी जी ने जो भूर्भुवस्व का अपने तरह के एक अलग से अर्थ किया, ये उन्होंने इसका जो रेफरेंस दिया तैत्तिरीय आरण्यक से उन्होंने लिया। नाउ आर गिविन द मीनिंग्स ऑफ अदर वर्ड्स ऑफ गायत्री मंत्र। अब हम गायत्री मंत्र के दूसरे शब्दों के अर्थ की ओर चलते हैं। तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। इसमें जो सवितुहु है, इसका अर्थ होता है सविता का। सविता का क्या मतलब है? तो स्वामी जी इसका अर्थ करते हैं, यह सुनोति उत्पादयति सर्वम जगत स सविता तस्य ऑफ हिम हु इज द क्रिएटर एंड एनर्जाइजर ऑफ द होल यूनिवर्स। सविता का जो रूट वर्ड है सु, संस्कृत में, दुनिया में बहुत कम भाषाएं जो बहुत क्लासिकल लैंग्वेज होते हैं, एंशियंट लैंग्वेज होते हैं, उनमें शब्द बनाने की फैक्ट्री होती है। जैसे आप सामान बनाते हैं, इसी तरह शब्द वहां बनाए जाते हैं। उनके वहां रॉ मटेरियल है जिसको हम रूट कहते हैं, उनके वहां प्रोसेसिंग के फॉर्मूलाज हैं, उनके वो जैसे संस्कृत है, लैटिन है, ग्रीक है, ऐसे दो तीन भाषाएं दुनिया में होती हैं जिनमें शब्द, नए नए शब्द बनाए जा सकते हैं और बनते हैं। जब इंग्लिश में आप कोई वर्ड्स बोलते हैं तो आप उसके रियल मीनिंग समझने के लिए आप उसके रूट वर्ड ढूंढते हैं, या तो आपको ग्रीक में, लैटिन में, संस्कृत में, अरबी में, क्योंकि इंग्लिश जैसे जो मॉडर्न लैंग्वेजेस होते हैं उनका अपना कोई वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं होता है। वो किसी ना किसी क्लासिकल लैंग्वेज से वो शब्द बना करके अपने वहां समा लेते हैं। वैसे जो इंग्लिश के एक्सपर्ट कहते हैं कि इंग्लिश के जो डिक्शनरी है उसमें सिर्फ 20% जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश के होते हैं। इंग्लिश का मतलब जो ओरिजिनली इंग्लिश है, जो जिसका सोर्स लैटिन से जैसे बाकी भाषाओं में बिगड़ के इंग्लिश में गया, बाकी 80% जो इंग्लिश में वर्ड है वो दुनिया के जहां जहां अंग्रेजियों का कॉलोनीज रहा वहां वहां से शब्दों को लिया और समृद्ध किया। पर संस्कृत में ये एक खास बात है कि यहां शब्दों की कैसे बनाए जाते हैं इसकी फॉर्मूलाज है, और जब आप उसके शब्द की मूल तक जाते हैं तब आपको उस शब्द का जो मूल भाव है वो समझ में आता है। इसी तरह सविता शब्द का जो मूल रूट वर्ड है वो है सु, और जिसका मतलब होता है जैसे कहा टू रिप्रोड्यूस, पैदा करना, या एनर्जाइज, किसी को प्रेरित करना। तो जो भी पैदा करता है या प्रेरित करता है वो सविता है। धीरे धीरे जैसे आजकल आप सुनते हैं गायत्री मंत्र से लोग सूरज को पूजने लगते हैं, लगने लग गए। अब क्योंकि सविता शब्द का अर्थ कुछ हद तक सूरज होता है, वो इसीलिए होता है कि सूर्य भी एक तरह के प्रेरक करता है। जब सूरज उगता है दुनिया में हर पशु पक्षी प्राणी जगता है और वो अपने अपने कार्यों को करते हैं, क्योंकि ये जो जड़ चेतन संसार है, इस संसार में सूरज के कारण जो आपके जो साइकिल है, बारिश हवा पानी वगैरह का, वो ठीक ठाक होता है और जीव जगत जीवित होता है। इसलिए सूरज को भी सविता कहा जाता है। पर वो जो परमात्मा है जो संसार में हर किसी को पैदा करने वाला है और हर किसी को प्रेरित करने वाला है, आपके अंदर जो बुद्धि है उस बुद्धि को प्रेरित करने वाला उस परमात्मा सविता है। तो सवितुः या सुनोति ऑफ हिम हु इज द क्रिएटर एंड एनर्जाइजेशन ऑफ द होल यूनिवर्स देवस्य तत्सवितुर भर्गो देवस्य। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, संस्कृत में जो जो वाक्य होते हैं उसका इंग्लिश या हिंदी की तरह ऑर्डर ऐसे नहीं होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ऐसा कुछ नहीं होता है संस्कृत में। वो अपने गाने, क्योंकि संस्कृत की ज्यादातर बातें गाने लायक होते हैं, सब गाया जाता है, लिरिकल होते हैं, उसमें रिदम होता है, उसके कारण उसमें ऑर्डर नहीं होता है और वो ग्रामेटिकली हर वर्ड अपने आप में फिक्स्ड है। इसीलिए आप कहीं भी कोई ऑर्डर रखो संस्कृत में कोई मीनिंग बदलता नहीं है। अब अगर इंग्लिश में कहें कि राम किल्ड रावण तो इसका ऑर्डर चेंज कर दिया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, तो रावण किल्ड रावण राम हो जाएगा। पर संस्कृत में ऐसा कुछ नहीं कि आप कह सकते हैं राम को आगे रखिए पीछे रखिए। और इस कारण जो नहीं संस्कृत जानने वाले लोग हैं उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है अर्थ समझने में, और जो जब समझाना होता है तो उसको पहले इंग्लिश या हिंदी की तरह ऑर्डर में लाना पड़ता है। तो अगर जब मैं तत्सवितुर वरेण्यम में तत् से शुरू न करके सवितु से किया, क्योंकि वो ऑर्डर यही है सवितुहु देवस्य, उस सविता देव का। तो देव का क्या अर्थ है, हमने बहुत बार चर्चा की है, पर स्वामी जी की भाषा में यो दिव्यति दिव्यते वा स देवः, हु इज द गिवर ऑफ ऑल हैप्पीनेस एंड हुज कम्युनियन इज सॉट फॉर बाय ऑल सच गॉड। स्वामी जी ने अर्थ किया कि जो देता है वो देवता है, क्या देता है वो अलग चीज है। इसकी सिंपल अर्थ है, सामान्य अर्थ है, संसार में जो भी तत्व वो जड़ है या चेतन है, वो मैटर है या कॉन्शियसनेस है, वो पेड़ पौधे हैं, हवा पानी है, पत्थर है, माँ बाप है, ईश्वर है, कोई भी हो, जो भी चीज हमें कुछ देता है बस जिसका भी मेरे जीवन में कोई कंट्रीब्यूशन है वो मेरे लिए देव है। वो कीड़ा भी हो या वो छोटा सा पत्थर भी हो, अगर मेरे लिए उसके कोई मेरे लाइफ में उसका कोई कंट्रीब्यूशन है वो देव है। देव का अर्थ है दाना, जो देता है या जो चमकता है। सूरज तारे नक्षत्र ये भी देव हैं क्योंकि ये चमकते हैं, और दुनिया का हर वस्तु हमारे लिए देव है क्योंकि ये इनका कंट्रीब्यूशन हमारे लाइफ में है। इसीलिए आज भी, जबकि आज का जो सनातन धर्म या वैदिक धर्म हिंदू धर्म है वो वैदिक धर्म से बहुत दूर जा चुका है। अब मान सकते हैं कि हजारों किलोमीटर दूर है। हम नाम को वेद उपनिषद गीता नाम लेते हैं, पर इन चीजों में जो हमारा जो प्राचीन धर्म था, आज का जो मॉडर्न हिंदू है, वो आप अगर सचमुच इसमें गहन अध्ययन करेंगे पढ़ेंगे आपको लगेगा आज का हिंदू धर्म कहीं वो वेद उपनिषद गीता वगैरह के आसपास नहीं है, वो बहुत दूर जा चुका है और काफी सारे उसमें चेंजेस मॉडर्नाइजेशन बहुत कुछ हो चुका है। तो देव का अर्थ धीरे धीरे जिस तरह के बिगड़ा, पर आज भी इतने बदलाव होने के बावजूद भी आम भारतीयों के लिए जो देवता का कंसेप्ट है वो वही है जो प्राचीन वैदिक काल का कंसेप्ट था। कि हर वस्तु, वो प्राणी हो या वस्तु हो, वो जीव हो या जड़ हो, हर कोई देवता है, क्योंकि हर किसी का हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए हमारे लिए पानी भी देवता है, पेड़ भी देवता है, जंगल भी देवता है, आकाश भी देवता है, सूरज भी देवता है, माँ बाप देवता है, गुरुजन देवता है, वगैरह वगैरह सब देवता है। ये एक तरह की एक्सेप्टेंसी है, स्वीकृति है कि मेरे जीवन में जिस जिस का कोई योगदान है, आई हैव टू एक्सेप्ट इट, आई हैव टू रेस्पेक्ट देम। मैं उसे स्वीकार करूं, अब मैं उनको सम्मान करूं। इसीलिए हमारे यहां सब देवता मानी जाती है। पर वो जो परमात्मा है, वो देवानाम, वो सबके देव हैं, वो सबको देने वाला। जो सूरज हमें रोशनी देता है, तो सूरज की रोशनी कहां से आती है? हमारे गुरु हमें ज्ञान देता है, वो ज्ञान कहां से लाता है? पुस्तकों, वो पुस्तक लिखने वाला ज्ञान कहां? तो उसका जो मूल सोर्स है, जो रूट सोर्स है, जो मूल स्रोत है, वो परमात्मा है। वो जो परमात्मा, जिसको सविता कहा, पैदा करने वाला, बनाने वाला, और देव कहा, अर्थात जिसने सबको सब कुछ दिया है, उस परमात्मा का जो वरेण्यम, वरेण्यम का अर्थ दिया वर्तुम अर्हम, वर्थी ऑफ एक्सेप्टेंस, जो स्वीकार करने लायक है, जिस जो लेने लायक है। आपके पास चार पांच तरह के खाना रख दिया जाए, बड़ा अच्छा बढ़िया स्वादिष्ट खाना हो, जो आपका मन पसंद है, बासी खाना हो, तीन चार दिन का खाना पड़ा हुआ वो रख दिया जाए, इस तरह, तो आप कौन सा खाना चुनेंगे? आप वो चुनेंगे जो ज्यादा टेस्टी हो, ज्यादा ताजा हो, जो ज्यादा स्वाद वाला हो, वही खाना चुनेंगे। तो आप जिसको चुनते हैं वो आपके लिए द बेस्ट होता है, सबसे अच्छा होता है। जिसको हम चुनते हैं उसे वरेण्यम कहते हैं। वरेण्यम का सिंपल अर्थ है कि श्रेष्ठ, द बेस्ट। पर बेस्ट क्यों है? क्योंकि आदमी अलग बात है कि हर आदमी अपने अपने सोच के हिसाब से किसको अच्छा या किसको बुरा मानता है, पर जो व्यक्ति जिसको भी चुनता है वो उसके लिए बेस्ट है, तभी चुनता है। अगर उसके पास ऑप्शन दिया जाए और वो चुने, तो उसके लिए जो बेस्ट है वही चुनेगा। और उसी को संस्कृत में कहते हैं वरेण्यम। वरेण्यम का अर्थ होता है चुनने लायक, स्वीकार करने लायक। हे परमात्मन, सविता देव, तुम्हारा जो वरेण्य है, वर्थी ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने लायक है, द मोस्ट एक्सीलेंट, जो सबसे श्रेष्ठ चीज तुम्हारे पास है, वो क्या है? भर्गह। भर्गह का अर्थ होता है शुद्ध स्वरूप, द प्योर नेचर, प्योर फॉर्म। भर्ग शब्द जिससे बना, ये बड़ा सुंदर है। रूट वर्ड समझने से आपको मजा आता है कि खाली शुद्ध कहने से तो कान में आ जाता है, पर शुद्धता क्यों है यह समझने पर आपके दिल पर उतरता है। भर्ग शब्द का रियल मीनिंग है भुना हुआ। जब आप आग में जो मेटल्स हैं, सोना है, चांदी है, लोहा है, इसको आप तपाते हैं, बहुत देर तक तपाते हैं, तो वो उसके बाद वो बड़ा शुद्ध होकर निकलता है, वो ज्यादा प्यूरिटी उसमें आती है। आग का दो काम है। आग में आप कुछ भी डालेंगे, या तो वो उसको भस्म कर देगा, अगर बच गया तो वो शुद्ध होकर आएगा, वो प्योर हो जाएगा। रामायण में जो सीता की अग्नि परीक्षा, ऐसा नहीं कि सीता अग्नि में कूद गया और कुछ नहीं हुआ, बाहर आ गई। इसका भावार्थ यही है कि आप आग में कूदे और बिल्कुल साबुत होकर के निकल आए। आग क्या है? ऐसी परिस्थितियां जहां आपको बिगड़ने को 100% चांस है। आप लोग डरते हो अमेरिका में बच्चे कैसे पालें, बहुत सारे जो नए नए पेरेंट्स आते हैं बड़े घबराहट के साथ जीते हैं, यहां का माहौल ऐसा, कैसे करें, बच्चों को कैसे पालें। अगर इस माहौल में भी आपका बच्चा पूरी तरह आपके जो आप जो मानते हो उसी तरह उतर गया, तो वो अग्नि परीक्षा में पास हो गया। मतलब विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी वो अपने धर्म को, धर्म का मतलब जो अपना नेचर है, जो उसका स्वभाव है, उसको उसने छोड़ा नहीं। यह मुश्किल होता, इसलिए प्राचीन काल में ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे। शहर में रह करके सन्यासी बने रहना यह अग्नि परीक्षा है। आप भोगो लग्जूरियस लाइफ के बीच में, लाइफ में लोग जीते हैं, और उन्हीं लोगों के बीच में रहते हुए भी आप अगर बिल्कुल सीधा साधा जीते और एंजॉय करते हैं, उस सिंप्लिसिटी को अगर आप एंजॉय करते हैं, तो आप अग्नि परीक्षा से ऊपर उठ गए। आग का काम है जलाना, या तो जला को आपको अपने जैसा बना देगा। आप लकड़ी डालते हैं तो लकड़ी आग में डलते ही आग हो जाता है, फिर लकड़ी को आपको लकड़ी नहीं मिलेगी, लकड़ी आग बन जाएगा, और जब कुछ आग बुझ जाएगा तो वो राख ही मिलेगा। अगर बच गया वो लोहा हो सोना हो जो बच जाते हैं, तो वो ज्यादा प्यूरिटी के साथ आते हैं। ये आग का धर्म है। तो अग्नि परीक्षा में लकड़ी पास नहीं होती है, पर लोहा सोना पास हो जाते हैं, और इसीलिए ज्यादा शुद्ध होते हैं। हम लोग अलग अलग कल्चर में, अलग अलग माहौल में, या तो हम उनमें समा जाते हैं, मतलब हम लकड़ी वा बाकी चीजों की तरह हो जाते हैं, या फिर हम अपने आप अपना जो स्वरूप है उसको बना के रखते हैं, तो मतलब हम अग्नि परीक्षा में पास हो जाते हैं। सीता रावण जैसा सुंदर ज्ञानी, जिसको आजकल कहते हैं ही मैन, इतना बड़ा ताकतवर, दुनिया में हर जगह उसका ताकत का नाम होता था, और लंका अयोध्या से 100 गुना सुंदर था, धनी था। उसकी जो अशोक वाटिका जहां सीता को रखा, वो अयोध्या में कहीं मिलती नहीं, मतलब भारतवर्ष में इतना सुंदर गार्डन थी नहीं। रावण ने धमकाया, समझाया, प्यार से बोला, हर तरह के लालच दिया, मतलब सीता को बिगड़ने के लिए पूरी चांस थी। मन बदलने के लिए पूरी संभावनाएं थी, पर सीता अपने मन में किसी कोने में कभी एक बार सपने में भी नहीं सोचा कि क्या फर्क पड़ता है, अब पता नहीं राम आएगा नहीं आएगा, मैं यही हो ही जाती हूं, ऐसा कभी मन में सोचा ही नहीं। इसी को कहते हैं अग्नि परीक्षा। भर्ग का अर्थ है कि अग्नि में डालने पर भी, भूनने पर जो शुद्ध रह जाए, इतना शुद्ध कि अब उसमें कोई मैला, कोई मिलावट, कुछ नहीं है, प्योर, बिल्कुल 24 कैरेट गोल्ड। परमात्मा का जो स्वरूप है वो शुद्ध है, हमारा जो है वो या तो कुछ नहीं, अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्योर होंगे तो भी 22 कैरेट के सोना होंगे, उससे ज्यादा प्योर हम हो ही नहीं सकते। क्यों? 22 कैरेट से ऊपर अगर सोना शुद्ध होगा तो उससे कुछ बनेगा ही नहीं। तो सोने से कुछ बनाने के लिए आपको कुछ मिलाना पड़ता है, कम से कम 2 कैरेट तो उसको घटाना पड़ता है। मतलब आप कितने भी शुद्ध होंगे तो आप 24 कैरेट तो केवल घर में रखने के लिए, बिस्कुट बना के, ईंट बना के रखने के लिए है। हम सब क्योंकि बने हुए हैं, वी आर मेड, तो हमारे में मिलावट है, अच्छा बुरा, सत्व रज तम वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि वो अनबना है, अनमेड है, स्वयंभू है, सेल्फ मेड है, इसीलिए उसमें कोई मिलावट नहीं है, इसीलिए वो शुद्ध है, प्योर है। तो उस सविता देव का जो शुद्ध स्वरूप है, जो प्योर नेचर है, उसको हम धीमही मतलब हम उसको धारण करें, सो दैट यह जगदीश्वर, दैट गॉड में प्रचोदया। वो हम उसकी जो जो शुद्ध स्वरूप है उसको हम अपने अंदर धारण करें, इस उस ईश्वर की स्वरूप को हम अपने अंदर धारण कर, मतलब ध्यान में, समाधि में, भक्ति में उसको लाएं। क्यों? क्योंकि वो जो यह, वो जो जगदीश्वर है, यो धियो यो न प्रचोदयात, यह मतलब दैट वन, वो जो जगदीश्वर है, मास्टर ऑफ यूनिवर्स, दैट गॉड प्रचोदयात, में डायरेक्ट, में इंस्पायर, हमें प्रेरित करे। किसको? न हमारा, अवर धीय मेंटल फैकल्टीज, हमारी बुद्धि को, हमारे मानसिक मन के अलग अलग स्टेजेस को प्रेरित करे। इट मींस, वैसे तो हमने पहले भी गायत्री मंत्र की व्याख्या यहां कर चुके हैं, पर आज हम स्वामी जी की भाषा में करते हैं, तो मैं जोर देता हूं स्वामी जी के लाइन को। स्वामी जी ने हिंदी में लिखा, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, ओ ऑलमाइटी गॉड, ओ एम्बोडिमेंट ऑफ ट्रूथ, इंटेलेक्ट एंड ब्लिस, ओ एवर प्योर, एवर वाइज, नेवर फ्री, ओ अनक्रिएटेड, अनअलॉयड एंड अनचेंजेबल, ओ वन दैट इज विद इन ऑल, बेसिस ऑफ ऑल, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, वो क्रिएटर ऑफ द होल वर्ल्ड, वो बिगिनिंगलेस, वो सस्टेनर ऑफ ऑल, वो ऑल परवेडिंग, वो ओशियन ऑफ द नेक्टर ऑफ मर्सी, मे वी एम्ब्रेस और रियलाइज दैट एक्सीलेंट रेफुलजेंट ऑफ दाइन, हु आर आवर डायरेक्टर इन चीफ, डियरर देन आवर ब्रेथ। फट पर फॉर दिस प्रेयर, ये प्रार्थना हम क्यों करें? अंतिम लाइन है धियो यो न प्रचोदयात, सो दैट यू माय मे डायरेक्ट आवर इंटेलेक्ट्स, यू आर एलन वर्थी ऑफ आवर वर्शिप, यू डू नॉट एक्नोलेज एनी वन एल्स आज योर इक्वल और योर सुपीरियर। तो हम प्रार्थना ईश्वर से क्यों किया? पहली लाइन में यही अर्थ था, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, उस सविता देव का जो वरेण्य धी, जो वरेण्य भर्ग है, उस सविता देव का जो जो एक्सीलेंट प्योर नेचर है उसको हम अपने अंदर धारण करें। क्यों? वो यह दैट गॉड हमारे नह हमारे धीय बुद्धि को प्रचोदयात प्रेरित कर सके, इमें डायरेक्ट और इंटेलेक्ट। बुद्धि को क्यों प्रेरित करें? हमने बार बार चर्चा की है कि ये जो गायत्री मंत्र है हमारे धर्म में हमेशा से, हजारों लाखों सालों से इसका जो महत्व है, अब धीरे धीरे लोग तो महत्व को भूलने लगे, अब हर चीज करते कुछ पाने के लिए। अभी अब आप गायत्री मंत्र इसीलिए नहीं पढ़ते हैं कि भगवान से प्रार्थना करेंगे हमारी बुद्धि तेज हो, अब गायत्री मंत्र भी इसीलिए पढ़ते हैं कि कुछ बीमारी ठीक हो जाए, कुछ धन संपत्ति आ जाए, नौकरी ठीक हो जाए, क्योंकि इसके अलावा लगता आजकल हम ज्यादातर और कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। पैसा, बीमारी, घर वगैरह, मतलब इन चार पांच चीजों के अलावा हम कुछ मांग ही नहीं पाते, कुछ सोचता ही नहीं, हमारा दिमाग यहीं पर ठप हो चुका है ज्यादातर लोगों का। हम मंदिर में जाएं, घर में जाएं, हम पड़ोसी में भी यही शिकायत करते हैं, हम रिश्तेदारों में भी यही शिकायत करते हैं, भगवान से भी यही शिकायत करते हैं। और अलग अलग मंत्र, वैसे तो आम लोगों को मंत्र पता नहीं, जिसको पता भी है मंत्र का जो अर्थ है वो भी अर्थ फर्थ से क्या, बस कोई भी मंत्र पढ़ लो, बस ये सब हो जाना चाहिए। पर क्यों गायत्री मंत्र इतना प्रसिद्ध हुआ? क्योंकि स्वामी जी का मानना है, क्योंकि ये इसमें ऐसी एक इंसानी प्रार्थना है, मनुष्य की प्रार्थना है, जो मनुष्य को एक मनुष्य बनाने के लिए इच्छा व्यक्त की गई है। क्योंकि पशु में और मनुष्य में जो जो मूल अंतर है, जो बेसिक डिफरेंशिएशन है, पशु प्रकृति के हिसाब से चलता है, नेचर, जो सृष्टि में हर पशु का जो नेचर है वो वैसे ही करता है, गाय को घास खाने का नेचर है, वो घास ही खाता है। आप उसको घास के अलावा आप उसको शेर की तरह खाना खाने लगे, मांस देने लगे, वो बीमार हो जाएगा। शेर को दहाड़ना नेचर है, उसको मारना नेचर है, उसको उस तरह के खाना नेचर, वो उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। हर पशु का अपना एक नेचर है, वो नेचुरल होता है। पर जो नेचर, जो प्रकृति है, अगर हम उसी तरह जीने लगते हैं तो हम पशु कहलाते हैं। पशु का जो रियल मीनिंग है, वैसे तो ट्रांसलेशन एनिमल है, पर एक्चुअली पशु शब्द का जो एटिमोलॉजी है, पश्यति इति पशु, जो सिर्फ देखता है, मतलब हम भी तो देखते हैं, वो देखने का मतलब जो भी उसके इंद्रियों के सामने आया उसके लिए वही ज्ञान है। अगर उसने देखा कि एक खरगोश खड़ा है तो वो खरगोश ही समझता है, वो जो देखा, जो सुना, जो जो उसके इंद्रियों ने ग्रहण किया वो उसी में एक्शन लेता है, उसको अपनी बुद्धि का बहुत कम प्रयोग करना होता है। पर आपके सामने जब एक खरगोश आता है तो आप देखते हो वो खरगोश लकड़ी का है कि जिंदा है कि लोहे का है, फिर उसके हिसाब से आप असेसमेंट करते हो कि मैं उसको लूं तो कितने पैसे में लूं, इसको लूं तो इसका क्या यूज करूं। क्योंकि हम इंसान का जो बेसिक अंतर है, जो जो फर्क है प्राणियों से, कि हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हम पशुओं से इतने उन्नत हैं। पशु आज भी जंगल में रहता है और इतने ताकतवर है, शेर है, हाथी में इतने बल है, और कमजोर सा इंसान मार डालता है। पूरे पशुओं का जितने जितने तरह के नस्ल थे, ज्यादातर नस्लों को हम खत्म कर चुके हैं। और आज भी जब हम बड़े बड़े लोग, जिन जब पैसा ज्यादा हो जाता है, कुछ तो अमेरिका में तो ये कल्चर है, बंदूक उठा के चल पड़े शिकार करने के लिए, सिर्फ टाइम पास करने के लिए, या अपनी जो हीरोइक नेचर दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा बहादुर हूं। तो हम कमजोर आदमी भी अपने दिमाग के कारण इस धरती को, इस सृष्टि को, सृष्टि के हर प्राणी को, ताकतवर प्राणी को भी खत्म कर देता है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है। और यही बुद्धि के कारण हम प्राणियों से बेहतर होते हैं, और इस बुद्धि का गलत इस्तेमाल करें तो हम बहुत सर्व विनाश करते हैं, अच्छा इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा करते हैं। हम जब इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो हम एटम बम फोड़ते हैं, जब हम इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो एटम से हम एनर्जी बनाते हैं। किसी ने पूछा ये धर्म की जरूरत क्या है, बकवास है, पूजा पाठ इसमें क्या रखा है, इससे इंसान को कुछ नहीं भला होता है। हमेशा से ये झगड़ा चलता है साइंस और रिलीजन में। असली बात ये कभी झगड़े का विषय है ही नहीं है, साइंस इंटेलेक्ट की डिमांड करता है। ये आपकी बुद्धि जितनी तेज होगी आप इतने अच्छे से साइंटिफिक चीजें निकालेंगे, आप उतने अच्छे टेक्निक आविष्कार करेंगे। पर जब आपकी बुद्धि जितनी प्यूरिफाइड होगा, जितना शुद्ध होगा, आप उसके इस्तेमाल जानेंगे, धर्म वस्तुओं के यूज कैसे किया जाए वो जहां से पता लगा उसको हम धर्म कहते हैं। वस्तु का, वस्तु कैसे बने ये साइंस का विषय है, वस्तु को कैसे यूज किया जाए वो धर्म का विषय है। आप साइंस में, आपको पता चला ये एटम एनर्जी है, आप इससे बिजली भी पैदा कर सकते हैं, दुनिया के करोड़ों गरीबों के घर में सस्ते बिजली दे सकते हैं। आप उसमें बम बना के हर किसी को धमका धमका करके दूसरों का तेल सोख करके तेल ले सकते हैं, मेरी इशारा आप समझ रहे होंगे। आप बम बना करके दूसरों पर फोड़ सकते हैं मारने के लिए। तो ये बुद्धि की बात है। जब आपकी बुद्धि बिगड़ती है तो आप बर्बाद करते हैं, जब सुधरती है तो आप दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। हमने गायत्री मंत्र में बुद्धि की प्रार्थना नहीं की। इस मंत्र में यह प्रार्थना नहीं है कि हे ईश्वर हमें बुद्धि दो, ये तो स्टुपिडिटी है। बुद्धि तो ऑलरेडी है, इंसान अपने आप बुद्धि लेकर ही आता है, नेचुरल है, उसके अंदर बुद्धि है। हम जो सिर्फ प्रार्थना करते हैं, ये हमारी बुद्धि को ठीक डायरेक्शन पर लगाओ। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं, कैसे कैसे सन की साइंटिस्ट भी होते हैं, वो दुनिया में ऐसा कोई चीज छोड़ना नहीं चाहते हैं, गंदे से गंदे चीज कि दुनिया को कैसे बिगाड़ा जाए। ये जो वार साइंस है, जो वार टेक्नोलॉजी है, लड़ाई के बारे में जो अस्त्र शस्त्र बनाने वाले, कि आदमी कलेक्टिवली या इंडिविजुअली, वो कुछ लोगों का ये फितरत है कि दूसरों पर राज करना, डोमिनेट करना, और इसके लिए उनको हाथ पैर चलाना पड़े, गोली चलाना पड़े, या तलवार चलाना पड़े, या मिसाइल चलाना पड़े। और वो दुष्ट जो दूसरों पर डोमिनेट करना चाहता है, नेचुरली वो कोई अच्छा आदमी नहीं, इट्स नॉट ए गुड मैन, वो कभी अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता जो डोमिनेट करके जिंदा रहना चाहता है। उसके उस ईगो को सेटिस्फाई कौन करता है? सो कॉल्ड साइंटिस्ट, जिनके पास खोज करने के लिए कुछ नहीं मिलता, वो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बनाते हैं। क्यों बनाते हो भाई? किसके फायदे के लिए बनाते हो? हमें अपना नॉलेज का यूज करना है, मेरे पास बुद्धि है, मैं मुझे यूज करना है, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है कि कौन यूज करता है, क्या करता है। मैं साइंटिस्ट हूं, मेरे अंदर इंटेलेक्ट है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और हुआ क्या, दुनिया में आजकल अनाज जितना नहीं है उससे ज्यादा अस्त्र शस्त्र है। और देखिए, हमारे ऋषि प्राचीन काल में एक बड़ी सुंदर कथा चली थी, ये आजकल के ये बुद्धि को लेकर के, पहले भी मैंने एक बार सुनाया। एक बार चार दोस्त, एक ही गांव के चार दोस्त गुरुकुल में पढ़ने गए, और पढ़ाई पूरी करने के बाद चारों को अलग अलग तरह के ज्ञान में एक्सपर्टाइजेशन, निपुणता मिली, और चारों गुरुकुल से पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस जा रहे थे। उन दिनों आजकल की तरह हाईवे तो था नहीं, वे भी नहीं था, हाईवे कहां से आएगा, तो रास्ते में जाएंगे, जंगल है, नदी है, जो कुछ है पार करके, तो जंगलों में पहुंचे। जंगल में चलते चलते देखा एक शेर की, मरा हुआ शेर पड़ा था, और उसकी जो पहले किसी ने शिकार किया होगा, मर गया था, और उसकी हड्डियां सब इधर उधर बिखरी पड़ी थी, छोटी थोड़ी बहुत, कहीं खोपड़ी पड़ा था, कहीं पैर पड़े थे, पड़ा था। उनमें जो चार दोस्त थे, एक को यह ज्ञान था कि वो हड्डियों को जोड़ करके एक फॉर्मेट बना सकता है, दूसरे को यह ज्ञान था, ये नॉलेज था टेक्नोलॉजी का, कि वो उसके जो पुराना फॉर्म, जो उसके मांस वगैरह है, जो फ्लेश वगैरह, जो रक्त वगैरह, वो उसको एज इट इज फिर दोबारा बना सकता है, हड्डियों में ये सब लगा सकता है। तीसरा जो दोस्त था, उसमें ये ज्ञान था कि किसी मरे हुए या सड़े हुए वस्तु, जीव अगर पड़ा हो, वो उसको जीवित कर सकता है। चौथा बेवकूफ था, मतलब इन बेवकूफ मतलब इतने ज्यादा बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं था, पढ़ा लिखा था, पर इसको ये कुछ नहीं आता था। तो तीनों ने सोचा कि हम अपने अपने ज्ञान का इस्तेमाल क्यों ना करें, हम इन हड्डियों को मैं जोड़ सकता हूं, तुम इनको इनके मांस खून वगैरह भर दो। तीसरा बोला कि मैं इसको जीवित कर दूंगा। चौथे ने कहा यह गलत है, तुम्हारे पास ये ज्ञान है, ओके ठीक है, पर तुम गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हो, या तू बेवकूफ है, तुझे आता नहीं है इसीलिए चिल्लाता है। हमारे पास ज्ञान है तो हम इस्तेमाल क्यों ना करें, जैसे आजकल साइंटिस्ट कहते हैं, हमारे पास इंटेलेक्ट है तो हम यूज क्यों ना करें। तो उन्होंने किया, एक ने हड्डियों को जोड़ा, दूसरे ने उसको बिल्कुल शेर का जो पुराना फॉर्मेट था वो वापस लाया, तीसरे ने जब जीवित लाने के लिए शुरू किया, तो चौथे ने बोला कि एक मिनट रुक जाओ, अगर तुम्हें यह सब करना है तो मुझे भागने दो, मैं भाग जाऊं फिर जो करना है करना। वो भाग करके पेड़ के ऊपर चढ़ गया और तीसरे ने उस शेर को जीवनदान दिया। शेर जिंदा होते ही तीनों साइंटिस्टों को खा गया। ये स्टोरी आज से 3000 साल पहले पुरानी कहानी है और आज भी कंटेम्प्ररी है, रिलेवेंट है कि बुद्धि होने से आप कुछ भी कर सकते हो, सोच के कुछ भी करोगे तो सिवाय इस धरती को बर्बाद करने का कुछ नहीं। इसलिए बुद्धि अच्छी होनी बड़ी जरूरी है कि आप उसको कैसे यूज करते हो। गायत्री मंत्र में यही प्रार्थना की गई है, परमात्मन हमारी बुद्धि को प्रेरित करो, अच्छा बनाओ। द पर्पस ऑफ प्रेइंग द लॉर्ड इज दैट ही बींग विद इन आवर सोल्स एंड इंटेलेक्ट्स विल कीप अस अवे फ्रॉम एविल डीड्स एंड एविल वेज एंड विल डायरेक्ट अस टूवर्ड्स द पैथ ऑफ राइटियसनेस। इसलिए स्वामी जी इसकी व्याख्या करते हैं कि इस प्रार्थना का उद्देश्य है कि देखिए बुद्धि तो हम सबके पास है, तभी तो हम इतने अच्छे अच्छे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, ऑफिसर हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं वगैरह वगैरह, जो कुछ भी हम हैं बुद्धि है। पर हम ईश्वर से इसीलिए यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि से जो जो हमारी बुद्धि को एबल डायरेक्शन मत दो, कोई बुरे रास्ते पर ना जाए, अच्छे रास्ते पर जाए ऐसी शक्ति दो। लेट अस नॉट वर्शिप एनीथिंग बट हिमसेल्फ, उस परमात्मा के अलावा किसी की पूजा मत करो। देयर इज नॉन हिज इक्वल और सुपीरियर, उस परमात्मा के बराबर कोई नहीं, ना उससे बड़ा कोई नहीं। आजकल गुरु लोग उससे बड़ा हो चुके हैं। एलॉन इज आवर फादर, किंग, जज एंड हैप्पीनेस गिवर, वही अकेला हमारे पिता है, राजा है, सुख देने वाला है, न्यायालु है। After teaching this Gayatri, they should tell their pupils different items of daily prayer. वो हम next time चर्चा करेंगे गायत्री मंत्र के बाद आगे के बारे में। समय हो चुका है, अब हम आरती करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने सुना।